हरे कृष्ण। तो आज श्री श्रीवास ठाकुर के आविर्भाव तिथि है, तो इसके लिए एक हमारा जो नित्य प्रति भजन गाते थे उसके अलावा थोड़ा हट करके एक वैष्णव भजन गाएंगे। ये भजन गा सकते हैं? सुनो, ये मैं एकदम नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। आप लोग का राधिका रमण मंदिर है ना, इसे मुझे गाना नहीं आता है, मैं प्रयास करता हूं, इसलिए क्षमा कर देना। आप बजाए।
नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाय वीणा नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नाम अमनि उदित हय भकत गीत सामे। नाम अमनि उदित हय भकत गीत सामे। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। अमीय धारा बरी से घन अमीय धारा बरी से घन श्रवण जुगले गिया श्रवण जुगले गिया भकत जन सघने नाचे भकत जन सघने नाचे भरिया आपन हिया भरिया। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नारद माधुरीपुर आसव पसी माधुरीपुर आसव पसी माताय जगत जने माताय जगत केह बा कांदे केह बा नाचे केह बा कांदे केह बा कांदे केह बा नाचे केह बा केह माते मने मने केह नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि पंचवदन नारदे धरी पंच पंचवदन नारदे धरी पंचवदन प्रेमेर सघन रोल प्रेमेर सघन कमला कमलासन नाचिया बोले कमलासन कमलासन नाचिया बोले बोलो बोलो हरि बोलो 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 आ बोलो बोलो हरि बोलो 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 नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे नारद मुनि सहस्रानन परम सुखे सहस्रानन परम सुखे हरि हरि बोली गाय हरि हरि बोली नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम नाम रस सवे पाय नाम रस नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे नारद मुनि कृष्ण नाम रसने स्फुरी श्री कृष्ण नाम रसने स्फुरी बुराल आमर आस बुराल आमर सिरूप पदे जाचे इहा सिरूप पदे सिरूप पदे जाचे इहा भक्ति विनोद दास नारद मुनि बजाए वीणा अधिका रमण नामे नारद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पंचवत
ऊंचा बदन नारद धरी कमलासन नाचिया बोले बोलो बोलो हरि बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नारद मुनि बजा बिना राधा रमण नाचे नारद मुनि हे नारद मुनि बजा बिना राधिका रमण नाचे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री श्री राधा राधिका रमण जी की श्री श्री श्रीवास पंडित की श्री श्री नारद मुनि की समवेत भक्त वृंद की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब हम जैसे कलिहत पतित जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे तो अकेले नहीं आए, अपने पूरे ग्रुप को साथ में लेकर आए थे, पूरे पार्टी लेकर आए थे। स्व पार्षद सुय धाम सह अवतरी आए थे उन्होंने। तो उनके पार्षद में जो मुख्य पार्षद है उन्हीं के ही विस्तार है, जो पंच तत्व है, पांच रूप में भगवान लीला कर रहे थे गुरांग महाप्रभु। तो उनमें से एक तत्व है भक्त तत्व। तो श्रीवास आदि कोटि कोटि भक्त गण शुद्ध भक्त तत्व रे करे गणना, ये शुद्ध भक्त के तत्व है। पांच तत्व में तीन जो हैं श्रीमन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, ये तीन तो आराध्य तत्व है, ये तो साक्षात ईश्वर तत्व है तीनों। बाकी जो दो है वो आराधक तत्व है, वो आराधना करने वाले हैं। आराधक तत्व में एक तो भगवान के डायरेक्ट शक्ति है गदाधर पंडित, शक्ति के प्रकाश, और जो हम जैसे भक्तों का नायक है, जो लीडर है, वो है श्रीवास पंडित। तो श्रीवास जी का जन्म बंगाल में कुमारहट्ट में पास यहाँ भी हुआ था। उनके पिताजी के नाम थे जलधर पंडित। उनके पांच पुत्र थे, नलिनी पंडित, शिवास पंडित, श्रीराम पंडित और श्रीपति और श्रीनिधि, श्रीपति पंडित और श्रीनिधि पंडित, ऐसे पांच पुत्र थे। और पांचों को पांच महान कृष्ण भक्त थे, गौर भक्त थे, गौरगत प्राण थे। पिताजी के अंत में पांचों भाई गंगा जी के किनारे वास करने के लिए पूर्व बंग छोड़ करके पश्चिम बंग आ गए और नवद्वीप में वास करने लगे, मायापुर में गंगा किनारे। कुछ दिन के बाद बड़े भाई नलिनी पंडित का देहांत हुआ। वो पांचों के पांच गृहस्थ थे। नलिनी पंडित बड़े भाई थे, उनके गृहस्थ देहांत होने के बाद उनके एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था नारायणी। नारायण का चरित्र हम नहीं कहते लेकिन वो की थी, बाकी किसी का कोई संतान नहीं थे चार भाइयों का। तो शिवास पंडित कहते हैं कि उसके बाद में शिवदास पंडित बड़े रहे और उनके साथ में चारों भाई नवद्वीप में रहकर केवल एक ही काम है कीर्तन करना, वास बाकी कैसे खाएंगे पिएंगे पहनेंगे परिवार चले कुछ चिंता नहीं था उनका, नो टेंशन। तो जब शिवदास पंडित छोटे थे अपने बालक अवस्था में बड़े उद्धत बालक थे, बड़े नटी भाई थे, तो कई भजन साधन ऐसे नहीं करते थे बालक अवस्था में। ऐसे कहा गया कि एक बार जब उनको 15-16 साल की उम्र था तो उनको एक ज्योतिषी देखा, उनका हाथ बोला अरे तू तो मरने वाला है, तेरा पर्व पूरा होने वाला है, कब ना अभी एक महीना ही बाकी है बस, 15 साल हो गया अभी 16 साल शुरू होते ही जाएगा तेरा ध्यान तो हो जाएगा, नहर में क्या करूँ ना तो बड़ा बदमाश है तो कुछ किया नहीं पुण्य पुण्य तो नरक में जाएगा ना क्या करूँ, अरे कुछ करो ना क्या करूँ ना कुछ नहीं करो तो जाकर कम से भागवत सुनो। तो उन्होंने बोला किसी भागवत सुनो भजन करो क्या करूँ, तो लड़का था तो नवद्वीप में बहुत बड़े भागवत के अध्यापक थे देवानंद पंडित, बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे, बड़े सात्विक व्यक्ति थे सदाचारी, तो उनका स्कूल था, कई सारे स्टूडेंट भागवत पढ़ने के लिए उनके पास आके बैठते थे। तो शिवदास पंडित नए नए अभी बिना एडमिशन जाके बैठ गए पीछे। अब कालमणि जी से बता रहा था जिसको डेथ का नोटिस आ जाए तो उनका भजन में और श्रवण में जो लय जो अटेंटिवनेस आएगा वो तो आपने आप पूछ कर देख लीजिए, है ना, हम लोग प्रयास करके नहीं हो पाए क्योंकि शिवदास जी का आ चुका था नोटिस मिलता था, तो इतने सीरियस हो चुके थे, वो तो सीरियस ज्यादा हो चुके थे क्योंकि बदमाश थे, अभी बहुत कम समय में उनको कोटा पूरा करना है इसलिए बहुत हेवी सीरियस होकर गए। अब जाकर बैठ करके जब सुन रहे थे उनके भागवत व्याख्या को तो उनके अंदर भाव आ जाता था, तो बिल्कुल पागल की तरह व्यवहार करते थे, तो उनमें वो स्टूडेंट लोग बाकियों को डिस्टर्बेंस होता तो बोले नया कहाँ से आएगा डिस्टर्ब करता सब, तो उनको उठाकर बाहर रख दिए, उनका टीचर कुछ नहीं बोला उनको, देवानंद पंडित उनको रुकना था, हम जानते थे भाई देखो इतने सीरियस स्टूडेंट आया है आज सुनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ प्रतिवाद नहीं किए, उनके सामने उनका प्रति इस प्रकार दुर्व्यवहार किया गया तो उठा के बाहर रख दिया गया, उनको निकाल दिए बाहर, निकाल दिए तो इतने दुखी हो गए और उनका समय भी आ चुका था, उनका समय ड्यूरेशन पूरा हो चुका था, वही मर गए, सही छूट गया उनका। तो कहते हैं कि अभी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ था, जन्म ही नहीं हुआ था ना, तो महाप्रभु आ गए, अभी प्रकट नहीं थे उससे पहले महाप्रभु आए, आकर के उसी घटना स्थल पर पहुंचे जहां शिवदास जी के बड़ी पड़ा हुआ था, आकर के कस करके चाटा लगाए उनको, लूट तू कैसे चला जाएगा, मैं अभी आया ही नहीं, तेरा बहुत काम है तू कैसे चला जाएगा अभी, तो एक चाटा के आघात से फिर उठ के खड़े हो गए, डेड बॉडी खड़ा हो गया। अब उठ करके बोले तू जानता नहीं तू कौन है, ना कौन हूं ना तू नारद है, अभी मैं आने वाला हूं और आपको बहुत कुछ काम करना है, रेडी हो जाओ। तो महाप्रभु के कर कमल का स्पर्श से, उनके दर्शन और स्पर्शन के प्रभाव से और उनको अपने अपना परिचय स्वरूप का ज्ञान हुआ कि स्वयं नारद जी है, और किस प्रकार महाप्रभु के लीला में भाग लेंगे, महाप्रभु तो वही इंगित कर दिए, तो वहीं से पूर्ण शुद्ध भक्त होकर के आ गए। वो नहीं कि भगवान ने बना दिए उनको, भगवान का ही अजब गुण होता है, भगवान किसको बनाना चाहेंगे वो कोई उसको कॉलेज में पढ़ाएंगे ट्यूशन भेजेंगे ये सब करेंगे ऐसा कुछ नहीं करते, बस फटाफट कर देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यंती यत सूरयः, सारे देवता लोगों को पागल होते हैं हो किसे गया, ब्रह्मा जी को पढ़ा दिए, ना कोई पेपर ना पेन ना स्लेट ना खड़ी ना कंप्यूटर ना लैपटॉप ना कुछ ना कुछ ना ट्यूशन मास्टर ना स्कूल ना क्लास नथिंग, कोविद बन गए ब्रह्मा जी, सीधा डाउनलोड कर दिया उनके हार्ट में। कहां से चिप्स लगा है, कहां से कनेक्ट किए पता नहीं, सीधा डाउनलोड करते नहीं ब्रह्मा हृदय बना दे, कभी कभी बना भगवान ही कर सकते हैं। ओ, उनको सिवा शुभ कर दी, एक चाटा मारे हो गया उनके डाउनलोड, सारे स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान सब ज्ञान हो गया। तो उसी स्पर्श से उन्होंने शिवास जी का रोल शुरू किए। तो उनके कई सालों के बाद में भगवान का आविर्भाव होता है। तो महाप्रभु ने अपने नवदीप लीला में, उनका जो हेडक्वार्टर था वह शिवास का घर था। अपने घर तो सचिरांगन तो था ही, लेकिन उनका जो मुख्य मुख्य कार्य था, उनका हेड ऑफिस मानना जाए तो शिवास आंगन, वो उनका हेड ऑफिस, सारे लीलाओं का सब कुछ काम, जो उनके रुद्रद्वार कीर्तन लीला महाप्रकाश लीला बाकी सारे सब कुछ वहीं हुआ करता था शिवास के घर। क्योंकि भगवान भक्तों को इतने पसंद करते हैं, भक्त के घर बना, वो चारों भाई बिल्कुल समर्पित भक्त थे, कुछ नहीं करते थे, चारों विवाहित गृहस्थ थे। एक बात सोचने लायक है, नारद जी के रूप में, नारद जी भगवान के मन के अवतार है, जितने प्रचारक भक्त हैं सबके सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं नारद जी, उनके तरह कोई प्रीचर नहीं हो सकता। उन्होंने तो कमाल कर दिए, प्रजापति दक्ष का उन्होंने बहुत प्रयास करके एक साथ में 10,000 लड़का पैदा किया था, हरिवास्व, और एक भी नहीं छोड़े, पूरे सेठ 10,000 एक साथ में ब्रह्मचारी बना दिए, कोई घर वापस नहीं गया। शादी करने के लिए तैयारी में गए थे, अब वहीं से वापस आए नहीं घर, वो बेचारा वेट कर रहा है, आएंगे शादी शुदा करेंगे। आए दख बेचारे बोले से इतना निष्ठुर है, एक दो छोड़ देता कम से कम, अरे जिसका दो चार है एक छोड़ करके किसी को दे देते, तो 10,000 लड़के सारे को सारे मेरे आगे बना दिया। दुखी हुआ क्या करें, तो सेकंड फेज में 1,000 सब बोला सो फिर पैदा किया 1,000, उनको भी वो पहुंच गए, उनको भी ट्रेनिंग के लिए भेजा था कि जाओ पक्के होकर के आओ, शादी करना है और प्रजा उत्पन्न करना है, उनको भी एक भी नहीं छोड़े, पूरे 1,000 को 1,000 मेरे आगे। दक्ष प्रजापति तो इतने क्रोधित हुए, नाराज जी को अभिशाप दे दिए, बोले तू कैसा भगत है यार, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अरे लोगों को पहले क्या संसार के कष्ट है तो उनको को पता चले, तभी तो जाकर वैराग्य लेंगे, पता ही नहीं कैसे ले लेंगे, इमैच्योर हो गए, कच्चा रह जाएंगे सब पक्के नहीं, ऐसा क्यों करता है, साफ दे दिया उनको, तू कोई टिक नहीं घूमते रहो। ना जी बोले बहुत अच्छा, थैंक यू सर। तो जो नारद जी स्वयं परम वैरागी त्यागी सन्यासी थे, और जिनका यही कर्म था सबको घर छुड़ाते थे, सबको परम वैरागी बनाते थे कृष्ण लीला में, वही नारद जी आज गौर लीला में गृहस्थ बने। भाई वो तो परम वैरागी थे नारद जी, जब हैं नहीं गृहस्थ बन गए, क्योंकि कलिजुग है ना, कलिजुग में ये वैरागी धर्म बड़ा गड़बड़ होना मुश्किल है, तो इसलिए बेटर टू बी ए अनेस्ट गृहस्थ है ना। तो ये शिक्षा देने के लिए नारद मुनि स्वयं इस कलिजुग में गौर लीला में स्वयं गृहस्थ बन गए। लेकिन आप बोलो गृहस्थ लोग बोलेंगे अच्छा है हमारा सपोर्टर है वैराग्य गृहस्थ बने, लेकिन ऐसा गृहस्थ बने आप सोचो, सब गृहस्थ उन्हीं का तरह गृहस्थ बनना चाहिए, कैसे गृहस्थ बने भी आदर्श गृहस्थ, ऐसे आदर्श गृहस्थ बने, ना तो कोई जॉब करे, ना तो कोई बिजनेस करे, ना तो कोई दुकान, ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब करते क्या, केवल अकेले नहीं, पूरे परिवार चार भाई इकट्ठा थे, मैंने कोई अलग अलग नहीं थे, एक ही घर में रहते थे, एक ही किचन में बनता था खाना खाते थे और सभी विवाहित थे, कोई धंधा काम नहीं, काम केवल दिन रात हरि नाम करते। बस उनके गांव वाले इतने तंग हो गए आकर के, नाना प्रकार के उनके नाम में झगड़ा के वो की कर रहे थे। बोले क्या हो गया, तो कुछ धंधा बने तो है ही नहीं, कुछ करते तो है ही नहीं। अब भीख मांगते तब भी कोई होता, भीख भी नहीं मांगते, भूख के मारे चिल्लाते रहते, वो करेंगे क्या घर के अंदर, सो भी नहीं सकते। रात को भी कीर्तन करते थे, बोले रात को नींद कैसे होगा, भूखे पेट रहते, भूखे पेट में दिन रात चिल्लाते रहते हैं। बोले भाई तू भजन करना है, कीर्तन करना, तो चुपचाप मन में नहीं कर सकता। मन में भगवान को स्मरण करने से क्या नहीं चलेगा, ये चिल्लाकर बोलने से पुण्य होगा, नहीं तो पुण्य क्या हो जाएगा, ये कौन सा बात है, ये कौन सा शास्त्र में लिखा है। ऐसे गांव वाले ने उनकी युक्ति करते लगे, झगड़ा करते थे, उनका कंप्लेन करते थे जाकर के पुलिस के पास, लोकल पीएस में, स्टेशन में, और यहां तक बोले अभी तो राजा के पास खबर पहुंच गया, नवाब के पास, सब नौका में भर करके दो पुलिस फोर्स आ रहे हैं, अभी सारे गांव वाले भी सब खत्म करेंगे। गांव वाले बोले हमारे क्यों दोष है, वही बदमाश है, उनको चलो मार मुड़ के उनके घर को भांग के गंगा में फेंक देंगे, सब तोड़ देंगे। अब पुलिस आ रहे, एक इतने सारे हल्ला किए, तो शिवासी और जो बाकी लोग जो कोई थोड़ा आते थे उनके साथ कीर्तन करने के लिए, बहुत कम भक्त थे, बाकी सब साक्त थे, तो डर गए। डर गए तो महाप्रभु का प्रकट हो चुका था, तब बालक अवस्था में थे। सबसे प्रथम जो बालक निमाई पंडित लीला में थे, पंडित दिखा रहे थे, निमाई पंडित ने गंगा किनारे घूम रहा था, शिवासी ने डर गए थे, पूरे गांव वाले आकर खूब झगड़ा करके गए, बोले अभी फोर्स आ रहा है नौका में चढ़ करके, गांव को तो तहस नहस करेगा, तुझे तो बांध बूंद कर ले जाएंगे चारों भाइयों को, और ऐसे करेगा। उसको सुन करके बड़े भयभीत हो गए, जाके अपना घर में, उनका एक अल्टर रूम था, डीटी रूम था छोटा सा, उसमें एक नरसिंह शिला रखे थे, उनको पूजा करते थे, कबाड़ बंद करके और बिल्कुल ध्यान लगा करके, इतने बड़े भाई भाई के मारे, डर के मारे सुभाष पंडित और नरसिंह देव का आराधना करते थे, बड़े ध्यान से करते थे। अब महाप्रभु के यहाँ से गंगा किनारे घूम रहे थे, दोपहर का समय था, वो तो अंतर्जामी है, भक्तों के भय उनको लगा, बोले क्या एक गांव वाले उनको तंग करते, मेरा श्रीवास को उनको डर दिखाते, वो बेचारा नृसिंह पूजा में लगा है बड़े ध्यान से, मैं इधर घूम रहा हूँ। तो महाप्रभु वहीं से स्नान नहीं किए गंगा किनारे से चल पड़े, सीधा जाके शिवास के घर में पहुंचे। अब इतना ज्यादा खातिर नहीं था, शिवासी जानते थे निमा यही बहुत बड़े विद्वान बालक है, बहुत पंडित है, बड़े चंचल है, ऐसा है, जानते थे। लेकिन वो बालक जाकर घर में पहुंच गया उनका, और शिवासी तो घर के अंदर अंदर से कबाड़ बंद करके नृसिंह जी को ध्यान करते थे, जा करके एक लात मारे बाहर से कबाड़ को जोर से, और चिल्ला करके बोले श्रीवास क्या कर रहे तुम, क्यों डर रहे, किसकी पूजा कर रहा है, जिसको पूजा कर रहा है, जिसको ध्यान कर रहा है, वो तो सामने विद्यमान है, तू अंदर क्या कर रहा है। वो इतने जोर से लात मारे दरवाजा तोड़ गया उसका, गरीब घर तक कोई इसने स्ट्रांग दरवाजा था नहीं। शिवास जी क्या हो गया, दरवाजा तोड़ गया, कोई नहीं चिल्ला रहे, खड़ा दिखता रही बालक निमाई, तो बोला क्या हो गया, और बालक निमा बालक रूप में नहीं थे, इतने प्रचंड उनका रूप था, उनको देखने नहीं बनता था, कोई देख करके आपने को संभाल नहीं सकता था, इतने विवत्स रूप था, क्यों नरसिंह आवेश में आ गए थे भगवान। अब वो शिवास जी तो कांपने लगा हाथ जोड़ करके, बोले बाप रे बाप, बालक का हो क्या गया। आप देखते देखते महाप्रभु प्रवेश करके उनका घर में, उनका अल्टर से नृसिंह शिला को निकाल कर स्वयं बैठ गए, तो उसको बुझा कर रहे, मैं इधर खड़ा, खुद बैठ गए नृसिंह जी का आसन पर अल्टर, आप कोई जाकर जाकर के उड़ा बैठा कर खुद बैठ जाए, किसका साहस है, जिनका सीट है वही बैठ सकता, बैठ गए जाकर के। बोले क्यों डर रहा है, मेरा कीर्तन तू कर रहा है, कोई डरने की बात नहीं, ये करूंगा वो करूंगा, बिल्कुल तो सब चारों भाई सारे परिवार लोग आ गए, सारे भाई उनके वधु पत्नी सब आकर के सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, देखते हैं तो क्या हो गया बालक को आज। बोले आपको विश्वास नहीं होता क्या, मैं सबको कोई कुछ नहीं कर सकते, डरो मत, खूब कीर्तन करो। कोई कुछ बोल नहीं रहे। बोले पता नहीं तू बालक निमाई, तेरे क्या भूत प्रेत आवेश हो गया क्या, आखिर हम कैसे कर रहा है। वहां पर बोले आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या। बोले कुछ दिखाना पड़ेगा विश्वास आपको। 4 साल के बच्ची थी नारायणी, उनके बड़े भाई की बेटी, बड़े भाई चले जा चुके थे, उनकी छोटी बेटी थी 4 साल की उम्र में। बोले नारायणी इधर आओ, गाओ कृष्ण करके, कीर्तन करो कृष्ण बोल करके। सब देखते पूरे परिवार के बीच में 4 साल की बालिका नारायणी तुरंत वृद्ध भाव होकर के कृष्ण कृष्ण करके चित्कार किया और सारे सात्विक विकार शरीर में आ गया, पूरे पसीना छूटने लगा, कंप होने लगा, रोमांच होने लगा, गदगद होगी से कीर्तन करने लगा। वो तो देख के सब आश्चर्य, एक आज्ञा मात्र से। बोले देखा तो उसके इसे कर दिया, तुम ये कहते कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे सबसे प्रथम अपने स्वरूप का, अपने लीला को ही शिवास के घर से शुरू किए थे। उसके बाद तो कई बार, एक बार काजी के पास गांव वाले ने कंप्लेन किए, उन्होंने पुलिस भेज करके वो कीर्तन करे तो उनका मृदंग तोड़वा दिया। आप जाएंगे शिवास अंगनवाज, एक बाहर मुझे लिखा है खोल भंगार दंगा, ऐसे लिखा है। एक टूटा हुआ मृदंग रख दिया, बोले ही मृदंग टूटा गया था, टूट दिए थे उन लोग। तभी भगवान ने जाकर के सबसे पहले, आज को लगभग 500 साल से ज्यादा पहले, भगवान ने सबसे पहले नॉन वायलेंस मूवमेंट, अहिंसा आंदोलन का शुरुआत वहीं किए थे। महात्मा गांधी बाद में उसको कॉपी किए। उन्होंने सारे बुलाए, बोले सब रात में चलेंगे, मसाल लेकर चलो, कोई कुछ नहीं करेंगे, घेराव कर देंगे जाकर। काजी को घेराव किए थे, हरी राम जानते हैं किस प्रकार। तो इस प्रकार शिवास का घर में महाप्रभु का सारे सीरियस लीला शुरू हुआ था। शिवास जी जब और वयस्क थे, जब ही निमाई बालक के रूप में थे, उसके बाद में उनका विवाह हुआ, फिर उन्हें टीचरशिप किए, फिर उसके बाद में उन्होंने अपने पितृ श्राद्ध करने के लिए गया गए, क्योंकि भगवान को पता था कि मुझे आगे चलकर के संन्यास लेना होगा, घर में नहीं रह सकता हूँ। घर में फिर गृहस्थ कर्म क्या है, पिताजी का श्राद्ध तो ब्राह्मण परिवार है, हर साल करना पड़ेगा तिथि पे, मैं तो घर में नहीं रहूँगा, कब करूँगा। तो इसे है हमारे सामाजिक नियम में, अगर पितृ श्राद्ध गया में एक बार जाके कर दो तो फिर वंश फराल खत्म, फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा, सदा के लिए हो जाएगा। तो महाप्रभु बोले मैं भी वही करूँगा वंश फराल। तो माता जी के बोले, सची माता बोले बहुत अच्छा है, अगर गया श्राद्ध करेगा तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने गया, गए श्राद्ध करने के लिए, और गया से ईश्वरपुरी से भेंट होकर के उनसे मंत्र दीक्षा लेकर के आने के बाद तो अभी तो बिल्कुल बदल गए, अब पंडित निमाई नहीं है, भक्त निमाई हो गए। अब हमेशा पुलक कंप अश्रु कृष्ण कृष्ण बोल करके रोते थे। सारे गांव वाले, उनके स्टूडेंट सब परिवार बोले हो क्या गया उनका। सची माता भी, उनके पत्नी भी सब चिंतित थे। डॉक्टर कविराज बुलाकर चेक करवाए, डॉक्टर लोग बोले कि ये तो लगता है बात विकार है, बहुत बड़ा बात के बीमार हो गया है। और कई दवाई पानी लिखे, प्रिस्क्राइब को लाकर बहुत कर दे, ठीक नहीं हो रहा था। सची माता बड़ा चिंता में थे। एक दिन सची माँ ने शिवास जी को बुलाया उनके घर के पास में, मैचुड़ंग बड़े आदमी थे। बोले शिवास देखो तो निमाई को हो क्या गया है, कौन सा बात बीमारी, ऐसे ऐसे सब लक्षण। तो शिवास जी आकर के ढंग से दिखे, देखिए उनका ये जो लक्षण को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले वाह, हम इतने दिन से तो यही बीमारी को अपेक्षा कर रहे थे, ये बीमारी हो ही नहीं रहा था अब तक। ये बीमारी बहुत पहले से होना चाहिए था। सची माता को बोले, बोले कोई चिंता की बात नहीं, कोई बीमारी फैले नहीं उसको, ये तो कृष्ण भक्ति के असली लक्षण है। तो महाप्रभु शिवास पंडित की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले शिवास अगर तू भी बोल देता ना मुझे बात में, अरे मैं आज गंगा में कूद जाता, लेकिन तू पहचान लिया, तू अपना आदमी है। जब निमाई पंडित ने अपने कीर्तन, अपने जो मिशन था संकीर्तन धर्म प्रचार, उसको करने के लिए जो विचार किए, बोले अकेले कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट नित्यानंद प्रभु चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु का जो मिलन हुआ नवद्वीप में, उस मिलन के बाद बोले ये कहाँ रहेंगे, तो नित्यानंद प्रभु स्वयं चुन लिया अपने घर, शिवाजी के घर, बोले यहीं रहूँगा। नित्यानंद प्रभु का उम्र महाप्रभु को लगभग जब 20 साल हो चुका था, नित्यानंद प्रभु के साथ भेंट हुआ तो उनका समय 20 साल से ऊपर हो चुका था, और नित्यानंद प्रभु का उम्र लगभग 40 साल हुआ होगा, कम से 32-35 साल है। एक 35 साल के युवक, और उनको रहने के लिए जगह दिए, बोले कोई जगह नहीं, बोले गृहस्थ घर में, जो चार फैमिली है सब शादी की है उनके घर में रहेगा, परम वैरागी है नित्यानंद प्रभु, हाँ परमहंस स्तर के वैरागी, उनको रहने के लिए दिए चार गृहस्थ फैमिली के घर में, वहीं रहेंगे। और वहीं रह करके उनका जो कार्यकलाप तो बोलने में नहीं बनता है ना, अब कोई गृहस्थ घर में नहीं रखेगा उनको। शिवास पंडित की पत्नी थे मालिनी, उनके घर में रहेंगे, उनके स्तनपान करेंगे। बताओ भाई, 35-36 साल के लड़का किसी गृहस्थ घर में रहेगा, उनके पत्नी के यहाँ स्तनपान करेगा, कोई छोड़ेगा उनको? लेकिन वो जानते थे नित्यानंद के तत्व को। 35 साल के लड़के नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से खाना नहीं खाते थे ना, थक देंगे बिल्कुल, दो साल के लड़के जैसे नटखट ऐसे करते थे, उनको खिलाएंगे गोद में बैठा कर तब खाएंगे, ऐसे करते थे। तो जो भी हो, उनके इस प्रकार के उपद्रव को शिवास सहन करते थे, और हर प्रकार के स्थिति को मानकर कुछ नहीं करते थे। जितने भक्त लोग का महाप्रभु जो रहेंगे तो सारे भक्त वहीं इकट्ठा होंगे, सारे भक्त इकट्ठा होंगे तो सबको देखभाल करना, अरे आपने बड़े परिवार है, घर है, कोई बड़ा जमींदार घर तो है नहीं, कौन ऐसे गृहस्थ है जिसका घर में हमेशा सुबह से शाम तक कई इधर से उधर से भक्त आकर, बैरागी रागी सब कहाँ से आकर इकट्ठा हो जाए, आकर अपना नाट करे, कीर्तन करे, दिन भर बैठे रहे, अपने चिल्लाते रहे। आप बोलेंगे क्या हमको कुछ नहीं करने, कोई सहन करेगा इतना? इसी प्रकार से हमेशा वो, तो एक बार जब कीर्तन लीला भगवान ने शुरू किए, वास्तविक रुद्ध द्वार कीर्तन, वहां पर जो कीर्तन रस का विस्तार करने लगे, वही स्थान को चुने शिवास के घर को। महाप्रभु स्वयं अपने मुख से घोषणा किए हैं, मैं हमेशा चार स्थान में रहता हूं, चार स्थान में हमेशा विद्यमान रहता हूं। चार स्थान क्या है? एक तो सची माता का आंगन, मां के पास हमेशा रहता हूं, सची माई आंगन में, मां भले देखे या ना देखे मैं उनके आसपास में हमेशा रहता हूं। दूसरा श्रीवास का कीर्तन, श्रीवास भले कहीं भी रहे वो कीर्तन करे और महाप्रभु ना पहुंचे, इसे नहीं हो सकता, श्रीवास का कीर्तन पहुंच जाए। तीसरा नित्यानंद के नृत्य, नित्यानंद पर पैर उठा दें कचाड़ दें महाप्रभु पहुंच जाए। और चौथा राघवर भवन, राघव उनके बहन दमयंती, वो जब कुकिंग करेंगे तो महाप्रभु पहुंचकर वहां खाना ही पड़ेगा, इतने विराट। तो शिवास के कीर्तन, इसीलिए नारद मुनि बजाय मीणा राधिका रमण वो गाते हैं, गाने वाले हैं, तो उनके कीर्तन में महाप्रभु हमेशा रहते थे। तो उनके घर में जो वास्तविक कीर्तन रस शुरू किए, रात में करते थे कबाड़ बंद करके अंदर, मुख्यतः श्रीवास के चार भाई होते रहते थे, बाकी जो महाप्रभु के अति निकट पार्षद वही जाते थे, उस कीर्तन में भाग लेते थे, बाकी कोई नहीं। एक बार तो नवद्वीप में एक आजन्म ब्रह्मचारी और जीवन भर कुछ अन्न भी नहीं खाया, फल भी नहीं खाया, केवल दूध पीकर रहता था, दुग्धहारी ब्रह्मचारी था, और बहुत सारे तपस्या किया था, व्रत आदि आचरण किया था, पूरा गीता भागवत खूब पढ़ा था, शास्त्र व्याकरण खूब पढ़ा था, बड़े पंडित था, पूरे दुनिया में उनका नाम था, सब उनको सम्मान पूजा करते थे। ये ब्रह्मचारी एक बार जो सुना कि खूब रात भर कीर्तन होता है बड़ा, तो उनके मन में इच्छा हुआ, शास्त्र में पढ़ा कि कीर्तन ही कलयुग का ही एकमात्र उपाय है। तो सुनकर के उन्होंने आया एक बार आके शिवासी किसी गांव में रहते थे, वो जानते थे बहुत बड़े विद्वान ब्रह्मचारी है और दिखने में बड़े चमकदार पुरुष थे। तो आकर रिक्वेस्ट किया है, मुझे थोड़ा ये करो ना, पता नहीं महाप्रभु तो बोले नहीं, मैं कैसे नहीं, प्लीज मैं केवल एक कोने में छिपा कर बढ़ दूँ, मैं तुरंत देखूंगा बस कुछ नहीं। शिवासी सोचे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सदाचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, दुग्धाहारी हैं, ये सब कई सारे क्वालिफिकेशन है, डिग्री है उनके पास, तो चलेगा कीर्तन में कर सकते हैं। तो उनको घर में एंट्री कर दिए, अभी स्टेज प्रोग्राम होने से पहले से उनको बैठा दिए थे, कहीं ढांग कर छिप कर बैठे थे वो। तो महाप्रभु की पार्टी आए, कवाड़ बंद हुआ, जो कीर्तन शुरू हुआ महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो बोले ना आज मेरा मन आनंदित नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ी है, कोई अनधिकारी व्यक्ति तो नहीं आ गया, जिसका इस पार्टी में भाग नहीं है कोई ऐसे अनधिकारी व्यक्ति तो नहीं आ गया। बोले अनधिकारी व्यक्ति नहीं, शिवास जी बोले अरे ये ब्रह्मचारी तो है इधर। तो शिवास जी थोड़े महाप्रभु से, शिवास क्या बात है? ना नहीं, एक नवदीप से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मचारी, बहुत जप तप ध्यान व्रत किया है, केवल दुग्धाहार कर रहा है, कुछ खाया नहीं, अन्न फल भी नहीं खाया है, बड़े है वो, थोड़ा आप कीर्तन देखना चाह रहा था। बोले क्या वही बैठा ना? हाँ, गेट आउट, निकालो उसको बाहर। और सब सुन रहा था, महाप्रभु डांटे उसी को सुना सुना करके। बोले क्या कोई केवल ब्रह्मचारी हो जाए, कोई दुग्धाहार करे, व्रत करे, तप करे, नियम करे, जब उपवास करे, इसी में मेरा भाग कीर्तन देखने भाग भाग लेने के लिए अधिकारी हो जाएगा, योग्यता प्राप्त कर लेगा? नहीं, बिना भक्ति में, भक्त संग में ये नहीं प्राप्त हो सकता, गेट आउट, निकालो उसके बाद। उस बिचारा का तो सारे मेरुदंड टूट गया, बोला अरे मैं कितने तपस्या किया हूं, केवल दुग्धाहार किया हूं, शास्त्र अध्ययन आचरण व्रत तप सारे मिट्टिया मिट, कोई योग्यता में गिनती में नहीं आया, बाहर निकाल ले गया उनको, कोई अधिकारी नहीं। रात भर खूब रोया, खूब अनुताप पश्चाताप किया, महाप्रभु तो अंतर्जामी है। बाद में शिवासी को रिक्वेस्ट करो, बोले क्या करो, तुम तो कृपा करो, भगवान बोले कि भक्त कृपा से अधिकार प्राप्त होता है, मेरा तो सब गया, जो मैंने किया था सब तो रिजेक्ट, अब तुम तो कुछ करो। तब फिर महाप्रभु ने बोला, बोले ठीक है, बुलाओ उसको, अब जब आपके सरेंडर कर रहा है, आपकी कृपा याचना कर रहा है, तो अधिकार मिल गया। एक बार तो महाप्रभु के कीर्तन कर रहे थे शिवास के घर में। देखिए गृहस्थ अगर आप चाहते हैं शिवास पंडित जैसे गृहस्थ बनने के लिए, अब तैयार भी होना चाहिए शिवास पंडित की तरह बनने के लिए। पढ़कर सुनाएंगे, एक बार तो शिवास के घर में महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, कभी कभी गंगा में स्नान करते, कभी कभी शिवास के घर में बैठेंगे वो स्नान करेंगे, सब लाकर गंगा का जल लाकर उनके स्नान कराते थे। तो एक बार महाप्रभु ने पूछे, बोले शिवास से पानी कौन ला रहा है? शिवास के घर में एक महिला काम कर रही थी जिसका नाम था दुखी, दासी के रूप में वो पानी लाते थे। बोले वो दासी दुखी पानी ला रहे। क्या वो दासी है, उनका नाम दुखी है, मेरे स्नान के लिए कोई पानी लाकर जो गाता है तो दुखी कैसे हो सकता है? उसका नाम चेंज करो, उनका नाम सुखी होगा। और महाप्रभु ने उस बिचारे को, तो बाकी सारे बड़े बड़े भक्त महाप्रभु के साथ बैठ के कीर्तन करते हैं, कुछ करते हैं, उस बिचारे को तो भाग्य नहीं, वो तो जा करके पानी गंगा से लाती है, भरती है उसको। तो महाप्रभु ने सारे अपने पास वाले भक्तों को छोड़कर सीधा दुखी की बुलाए और उनको पहले कृपा की। सभी लोग भक्त आश्चर्य हुए, बोले उसको ये दासी को ऊपर इसे कृपा, दासी है जे प्रसाद दुखी रे हैल, वृथा अभागिनी सब तहा ना देखिल, की कहिव श्रीवासीर भाग्यर महिमा, जार दास दासीर भाग्यर नहीं सीमा। श्रीवास का महिमा क्या बताएं, जिसका दास दासी का ही ए भाग्य कभी सीमा नहीं, साक्षात भगवान जिसको बुलाकर की कृपा करते हैं, तो उनके भाग्य में क्या कहा जा सकता है। तो इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे उनके घर में, परानंदे संकीर्तन करे श्रीवास, पुनः पुनः बढ़े आरो विशेष उल्लास। एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास मंदिरे, सुखे श्रीनिवास आदि संकीर्तन करे। दैव व्याधि जोगे गृहे श्रीवास नंदन, परलोक हईले न देखे नारीगण। एक दिन महाप्रभु नाच कर रहे थे श्रीवास का घर में, तो चार भाई तो पार्टी में थे डांस में, केवल चारों जो उनकी पत्नी थे वो घर में थे, उस रूम में नहीं आ सकते थे। तो श्रीवास जी के एक बेटा थे, एक पुत्र थे, लगभग 16 साल की उम्र था उनका, तो उनको कुछ बीमारी था, वो मर गए। जब मर गए वो डांस कर रहे थे उधर, बेटा मर गया, तो उनके माँ और उनके जो चाची माँ काकी माँ जो सब होंगे वो सब रोने लगे। तो आवाज़ आ रहा था, तो शिवास जी पीछे से दरवाज़ा खोल करके गया पीछे घर में, जाके देखा कि उनका बेटा 16 साल का बेटा पड़ा हुआ है मर करके, और उनके पत्नी और बाकी सब रो रहे हैं। तो उनके साथ कैसी बात कर रहा है, आचंबिते श्रीवास गृह उठी लक्रंदन, सभासद के रोने लगे, हठात मर गया लड़का। सत्तरे आईला गृहे पंडित श्रीवास, देखे पुत्र हैया छे परलोकवास, परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी, परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी। श्रीवास पंडित ऐसे थे, परम गंभीर भक्त थे, महातत्व ज्ञानी थे। स्त्री गणरे प्रबोधिते लागिला अपनी, सब स्त्रियों को बोलने लगे, क्या बोलने लगे, तुम्हारा तो सब जाना कृष्णर महिमा, संबर रोदन तबे चित्ते के न देह क्षमा। बोले आप लोग तो कृष्ण के महिमा सब जानते हो, फिर क्यों रो रहे हो, जानते नहीं कि कोई व्यक्ति मरते समय में कृष्ण नाम उच्चारण कर दे, कृष्ण स्मरण में आ जाए तो उनका उद्धार हो जाए, जीवन सफल हो जाए। और साक्षात कृष्ण अपने पार्टी के साथ हमारे घर में नाच रहे हैं, उन्हीं के इस नृत्य करते समय में अगर बेटा के देहांत हो गया, कितने महाकल्याण है। अरे मैं तो चाहता हूं मैं इसे बेटा के जीवन में होता, मैं इसे मृत्यु होता मेरा, ये कहां मेरे भाग्य में है, इतने बड़े सौभाग्य है उसका, तो रो क्यों रहे। हे न प्रभु आपने साक्षात करे नृत्य, गुण गाय जत तारे ब्रह्मादिक भृत्य, ए समय जहार हईल परलोक, यहां तक जुआ करते अर शोक। बोले साक्षात परमेश्वर कृष्ण नाच कर रहे हैं हमारे घर में, जिनके ब्रह्मा शिव आदि जिसके चरण वंदना कर रहे हैं, वो नृत्य के समय में आनंद, इसी समय में जब किसी का मृत्यु हुआ, इस समय को शोक करने के लायक है, ये तो बहुत सुख की बात है। कोनो काले ऐसे शिशु भाग्य पाई जबे कृतार्थ करिया आपने मानित हुए, अगर मैं ऐसे शिशु बनता तो मैं अपने जीवन को कृतार्थ मानता। तो इसलिए रोनो मत, सब डिस्टर्ब हो रहा है नृत्य में, कोई रोना नहीं। अगर फिर भी आप सब संसार धर्म, घर में बेटा मर गया 16 साल का, रोएंगे नहीं थोड़ा, सब जानते हैं ठीक हुआ जो हुआ, लेकिन फिर तो थोड़ा रोना चाहिए, समाज में लोग क्या कहेंगे, बोले कैसे लोग हैं यार, बेटा मर गया रोता भी नहीं थोड़ा। बोले तब अगर संसार के लिए समाज के लिए रोना है, थोड़ा रुक जाओ, अब महाप्रभु के नाच पूरा, उनके नृत्य पूरा हो जाओ, बाद में रोना, दो चार घंटे के बाद में अपने टिकट चलाना, अभी पर्स डाल के रखो। अगर नहीं अभी रोना है तो गेट से बाहर जाकर रोने लो, यहां आवाज नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए महाप्रभु के नृत्य में। लेकिन वो सुने कि पागली नहीं हो रहे, बेटा मर गया सामने, वे क्या बोल रहा है, वो तो रो रहे थे। बोले देखो खबरदार, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर दोबारा आप रोएंगे बेटा तुम्हारा, मैं ही मरूंगा, अभी सीधा गंगा में जाकर जाऊंगा गंगा में। और सब डर गए, बोले अरे ये मेरा वही मर जाएगा। देखिए एक ही बेटा था चार भाइयों में, वो भी मर गया, अब उनके पिताश्री अपने पत्नियों को क्या भाषण कर रहे हैं, कोई गृहस्थ ऐसा कर सकता, तो इसे नहीं समझना चाहिए, गृहस्थ बन गए बैरागी नहीं। तो वो चुपचाप उनको भगा करके, चुप करके शिवाशी फिर आ गए, आकीर्तन में नाचने लगे। तो कीर्तन घंटा दो घंटा और चलने लगा, धीरे धीरे महाप्रभु कीर्तन रुके, बंद हुआ, सब चुप हुए, लेकिन घर का बात तो चें चा खबर तो मिली गया, क्योंकि चार भाई थे, कोई किसी का पत्नी किसी खबर मिल गया, घर के पीछे ही था कबाड़ में, तो सारे भक्त लोग को पता चल गया। तो महाप्रभु तो अंतर्जामी थे, तो कीर्तन के बाद बोले आज मुझे नृत्य में इतना आनंद नहीं आया, सिवा सबका घर में कुछ अमंगल हुआ क्या, मुझे कोई ऐसा ऐसा लग रहा है मन में, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ। सिवास पंडित बोलते अरे प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, जहां आप विराजमान है, जहां आपके श्रीमुख दर्शन हो रहा है, यहां पर अमंगल आ कैसे सकता है, सारे मंगल के स्रोत जो आप ही हैं, आप स्वयं हसमुख करके यहां नाच रहे हैं गा रहे हैं, तो मंगल का क्या ताकत है आ जाए, अमंगल का नहीं आ सकता है ना, सो तो सो है लेकिन फिर भी शिवा सुनते कुछ नहीं, आपके सामने फिर क्या दुख है, कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं बोलते थे। तो बाकी भक्त लोग बोले महाप्रभु ऐसे ऐसे बात हुआ ना, क्या ना उनके लड़का मर चुका है, हैं कब से ना 2.5 घंटा पहले, था वो गया था चुपचाप जाकर उनको धमका करके आ गया, अरे उनको गाली देकर चुप करके फिर नाच रहा, हाँ आकर खूब नाच रहा था। तो महाप्रभु जब इतादृश त्याग देखे, देखो एक व्यक्ति है जिनका एक ही बेटा है 4 भाइयों में, वो 16 साल की उम्र में मर गया और जा करके उनके पत्नियों को और बाकी स्त्रियों को खूब डांटा, बोला मर गया तो बहुत अच्छा किया, और डांट करके आकर फिर नाचने लगा, ऐसा कोई पिता हो सकता देखा कभी, बेटा मर जाए आकर खुशी में नाचे, इतने इतादृश त्याग को देख करके महाप्रभु बोलने लगे हाय हाय, महाप्रभु रोने लगे, तुरंत रोने लगे, बोले मैं कैसे ऐसा संग को छोड़कर जाऊंगा, मेरे प्रति इतना प्रेम है, मेरे लिए आपने 16 साल के बेटा मर गया देखने तक नहीं गया, डांट करके आ गया फिर नाचने लगा, इतना महात्याग, इतनी बड़ी ममता का स्नेह के त्याग मेरे लिए, मेरे नृत्य में व्याघात ना हो, मैं कैसे आपको छोड़कर जा सकता हूं। तब सब सोचने लगे महाप्रभु क्या बोलते हैं छोड़कर जा सकता हूं मतलब, तो जो भी फिर महाप्रभु चुपचाप रह गए, बोले चलो देखते हैं कहां, तो जाकर देखे तो बोले अब तो 2.5 घंटा हो गया डेवड़ी पड़ा, अभी तो आप आदेश करें तो उनका शेषकृत्य करें ना, चलो हम भी साथ में चलूंगा, पूरे अपने ग्रुप लेकर के गए, पीछे दरवाजा खोल करके गए, सब मुंह में हाथ दे करके सब माताएं बैठे डड़बड़ी पड़ा हुआ है, आंख से आंसू गिर रहा है लेकिन नो साउंड, साउंड लेस रोना, साउंड प्रूफ कर दिए थे उन्हें जाकर धमका दिए थे, बेचारा रो रहे थे। अब जब पहुंच गए सब एक साथ में खुल करके रोने लगे, देखो अभी तक बंद करके रखा था साउंड ऑफ करके रखा था अभी आया, इतने निष्ठुर है बेटा मर गया फिर भी उनको शोक नहीं है। तब बोले आप आगे चलो, हम अब 2.5 घंटा हो गया डेड बॉडी पड़ा है घर में, उसको तो लेकर कौन संस्कार तो करें, तब लेने के लिए तैयारी करने लगे। महाप्रभु बोले किसे लेकर जाएं यार, मैं आ गया इसे ले जाएं, तब अब तक पड़ा था। बोले अरे डेड बॉडी पड़ा है 2.5 घंटे घर में लेंगे नहीं उसको, बोले मुझे दिखा कहाँ पड़ा, नहीं सोया हुआ। महाप्रभु चले गए, बोले ए बेटा क्यों जा रहा है श्रीवास को छोड़ के, तुम्हें क्यों जा रहे शिवास के घर छोड़ करके। जैसे महाप्रभु ने इसी वचन बोले, सभी के सामने 2.5 घंटा पहले से मर चुका था डेड बॉडी, बिल्कुल लकड़ी जैसा पड़ा हुआ था, अब उठ करके बात करने लगा। महाप्रभु जो बोले कि तुम क्यों छोड़ के जा रहे है, अभी ताली मत बजाओ गड़बड़ी है अभी जाकर जब पूछे कि बेटा तू क्यों शिवास के घर छोड़ के जा रहा है, तो धड़ से उठ कर बोला आपके नियम है, आपने मुझे बोले थे जाने के लिए, इतने दिन रहकर जाने के लिए, तो मैं जाऊंगा ना, अच्छा ऐसा क्या ना और क्या, आपने जो जिसकी व्यवस्था किए थे इतना दिन करेंगे, मुझे इतना दिन का यहाँ ड्यूटी दिए थे, अब वहां ड्यूटी मेरा है पर वहां छोड़ के वहां जाऊंगा, आपके जो व्यवस्था है तो इसमें तो सब मोहित हो रहे हैं, कौन किसका बेटा, कौन किसके पिता, कौन किसके माता, आपने जिसके जितने दिन जहां तक व्यवस्था किया था वह मैं अभी जा रहा हूं, ये तो आपके विधान है, आपके नियम को उल्लंघन करने का ऐसी शक्ति है किसका, और आप मुझे डांट रहे हैं, तो मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। महाप्रभु ऐसा क्यों कराए, सारे स्त्रियां रो रही थी बेटा मर गया था इसलिए, वही मरा हुआ बेटा ढाई घंटे के बाद उठ कर बैठ कर उन माताओं के सामने बोलते, कौन किसी का माता कौन किसका पुत्र, इस बेकार में रो रहे हैं, बेवकूफ मूर्ख है। मैं तो और कहीं का था, आया थोड़े दिन के लिए, 16 साल का यहाँ मेरा कोई गड़बड़ी किया था, इसने मुझे अभी सब तक यहाँ आया और वो मुझे मान लिया कि मैं उनका बेटा हूँ करके। मूर्ख को देखो रो रहे हो, मुझे तो और क्या जाना था, मैं उनका बेटा होने के लायक हूँ। ऐसे बोलकर सिर्फ उनका सारे आंख सूखे, बोले बेकार हम रो रहे थे, या बेटा देखो क्या बोल रहे हैं, कोई रोएगा बेटा, तो उनका दुख शोक सब खत्म, उनका फ्यूज कर दिए सारे, कोई अब शोक रहा ही नहीं। बोले जिसके लिए हम रो रहे थे वो हमको ऐसे बोल रहा है क्या रहेंगे उसके लिए। तब बोले संस्कार करने के लिए जाए, बोले फिर भी शिवास और आपके परिवार को महाप्रभु घोषणा कर, बोले आप दुख मत करो, आपके एक बेटा था, बेटा करके मानते थे उसको, तो चला गया, लेकिन वो क्या चला जाएगा, तो थोड़े दिन के बेटा था, अभी दो बेटा हम आपके रहेंगे, मैं और नित्यानंद, हम दोनों दो बेटे आपके रहेंगे, और हम दोनों तो जाने वाले नहीं है, हम हमेशा बेटा रहेंगे, जिसका हो गए उसका हो गए, अब संभालना पड़ेगा तुझे। हाँ संभालेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संभालेंगे। तो महाप्रभु बोले तो संभालेंगे, लेकिन तू देखो, मैं देख रहा हूं तू तो कुछ करता तो है नहीं, ना कोई काम, ना नौकरी वाकरी, दुकान पर कुछ नहीं करता, चार चार भाई है, चार चार बहू हैं, और हमेशा भक्त गोष्ठी आपके घर में आते हैं, ये तो नित्यता आपके घर में रहता ही है, वो तो जिसको जिसको पकड़ के ले आता है, और हम भी हमेशा आते हैं, हमारे साथ कितने लोग आते हैं आपके घर में, सुबह से शाम तक ऑफिस बनाते रहते हैं, रात भर भी नाचते हैं, दिन भर तो बैठते हैं, रात भर भी हमको खाने पीने से कुछ नहीं करने देते, फिर भी तेरा नो कंप्लेन, फिर भी हमारे साथ देते हैं आपने, लेकिन कैसे मेंटेन करता है घर में, सब आते हैं, सब कोई भी आएंगे, सब तो कुछ पानी वानी कुछ खाना बना कुछ तो देता होंगे आपने, कैसे देता है, कुछ करता है कैसे, कुलाइवा कैसे करते हैं आपने, कुछ जाकर कुछ काम करना चाहिए ना। तो शिवास पंडित बोलते हैं प्रभु क्या करूं, करना तो चाहिए, परिवार मेरा बड़ा है, अब मैं बड़े हूं घर में, मेरा दायित्व तो है, करना चाहिए, लेकिन कहीं जाने की मन ही नहीं करता, इच्छा नहीं करता ना, फिर ना ना कहीं जाने की इच्छा नहीं करता, फिर क्या करते ना, बस कीर्तन करते हूँ बैठ करके, सब मिल करके परिवार मिलकर कीर्तन कर ना, फिर पेट कैसे चलता है, ना पेट कैसे चलता है उसमें हमारे क्या चिंता है, जिसको पेट चलाने का चिंता है, जो पेट दिया वही चलाएगा, हमारा क्या चिंता है। बोले क्या बात कर रहा है, तो काम नहीं करेगा कैसे, खाना आपका अपने आप आ जाएगा ना, वो होता है, हम तो खाते हैं, सबको खिलाते भी खाते हैं, अभी तक तो किए नहीं, आप क्यों पूछते मुझे ना, मैं पूछ रहा हूं कि संसार के नियम है, तू गृहस्थ हो, इतने बड़े परिवार है, तुझे कुछ काम दाम करना चाहिए ना, मैं काम करने की इच्छा नहीं, मैं कर नहीं सकता, अब तक सिखाने काम दाम करना चाहिए, कुछ काम नहीं कर सकते ना, नहीं कम से कम टीचर शुक्र पढ़ाओ जाकर, लोगों को ट्यूशन करो कुछ ना, वो भी नहीं कर सकता, मुझे टाइम ही नहीं और करने, तब कुछ काम नहीं कर सकता तो भिक्षा मांगो, भीख मांग कर खाओ, कुछ करे नहीं कैसे कहेगा ना, मैं गृहस्थ हूं और मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं किसे भीख मांगू, भीख मांगने का काम तो जो सन्यासी ब्राह्मण का होता है, मैं गृहस्थ हूं और ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं किसे भीख मांग सकता हूं, नारी तो काम भी नहीं करेगा, भीख भी नहीं मांगेगा, कुछ नहीं करेगा तो बचेगा कैसे, इतने बड़े परिवार कैसे चलाएगा। तो शिवास पंडित ने 1 2 3 ताली मारे, महाप्रभु बोले ये इसका मतलब क्या है भाई, बोले हम तो पूर्ण भरोसा रख करके कृष्ण के ऊपर, क्या ना पहला दिन परिवार हम ऐसे डिसाइड कर चुके हैं, अब आपके कीर्तन करते रहेंगे, अगर जितना हमको खाने पीने का कोटा अगर घर में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जलाहार कर लेंगे गंगा जी पास में, उस दिन मान लेंगे व्रत आज हुआ एकादशी करके जलाहार करके रह जाएंगे, फल तो मिलेगा भी नहीं, फल तो और कष्ट लिए, फलाहार की बात ही छोड़ो, जलाहार करके रहेंगे हैं? रह जाएंगे, फिर दूसरे दिन भी फिर कीर्तन करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, उन्होंने कहे हैं अनन्योश्चिंतयन्ति मां, वही माँ के उनका भरण पोषण करूंगा जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तो हम तो आपके भरोसा में कीर्तन करेंगे, अगर फिर भी कुछ नहीं आया तो दूसरे दिन भी फुल फास्टिंग जलाहार करके रह जाएंगे, चलेगा दूसरा तल, तीसरे तीसरे दिन भी वही भरोसा में करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कहीं जाए लेंगे भिक्षा मांगने प्रयास नहीं करेंगे, वही भरोसा में फिर करेंगे। अगर नहीं मिला फिर भी जलाहार करके रहेंगे तीन दिन तक, ना हाँ तीन दिन तक, इतने दिन तक 72 आवर्स लिमिट है हमारा, फिर उसके बाद में ना, उसके बाद में तो हम रह सकते हैं, लेकिन यही नहीं रहेंगे, फिर गले में बड़े बड़े बोल्डर पत्थर बांध करके गंगा में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो कुछ नहीं, हम तो काम दाम करेंगे नहीं, नाम कीर्तन करने मरने मरते दम तक, लेकिन आसपास में पड़ोस में गांव में लोग आकर बदनाम करेंगे। क्या बदनाम करेंगे? हमारा बदनाम नहीं करा, हमारा बदनाम से क्या मतलब है, हम तो ऐसे ही गए बीते हैं। बदनाम आपका करेंगे, कृष्ण का करेंगे। क्या बोले? देखो उनके भरोसे में पड़कर तीन दिन खाए पूरी मर रहे हैं, देखो कृष्ण पोसेगा उनको और कृष्ण कुछ नहीं, देखो ये कहीं मर रहे हैं, तो आपका नाम बदनाम होगा, इसी को हम सुन नहीं सकते, तो इसलिए मर जाएंगे। आपके बदनाम हम सुन नहीं सकते हैं। तीन दिन के बाद सपरिवार गंगा में आत्मदाह महापुरुष बात को सुन करके सुभाष का आंख से धार धार आंसू बहने लगा। वहीं खड़े हो गए, उच्च स्वर से घोषणा कर, श्रीवास मैं आज 10 दिग्पाल को साकी रख करके घोषणा करके बोलता हूं, अगर ऐसा कभी समय ऐसा कभी हो कि साक्षात भाग्य की देवी भगवती लक्ष्मी को भी भीख मांगना पड़े, लेकिन आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा आर्डर है। लक्ष्मी तुझे मेंटेन करेगी, कहीं से लाकर भीख मांग कर तुझे मेंटेन करे, तुझे कुछ नहीं करना है। चलो इतनी भरोसा करा है, इतनी भरोसा है। तो इसे गृहस्थ भक्त थे, इतने अड़िग विश्वास था भगवान की नाम कीर्तन में, भगवान की भक्ति में। इसी कहते हैं श्रद्धा। भगवान जब श्रद्धा शब्द का व्याख्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है कि सुदृढ़ विश्वास। क्या विश्वास? कि कृष्ण भक्ति कैले सारे प्रकार के काम पूरा हो जाएगा। अगर हम केवल कृष्ण की भक्ति आजन करें तो मेरे परिवार के व्यक्तिगत सामाजिक और पारिपार्श्विक हर प्रकार के दायित्व पूरा पूरा पूर्ण हो जाएगा। खान पान जो सब आवश्यकता जो था सब पूरा हो जाएगा। ऐसा दृढ़ विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। बोले आप ही श्रद्धावान हो, तो इसलिए मैं घोषणा करता हूं कभी हो नहीं सकता, आपका कभी कभी कमी हो नहीं सकता। लक्ष्मी को परमानेंट अपॉइंटमेंट कर दिया हुआ, बोले उसको देखभाल करते रहो, इसी में अड़क वहीं पे पास करके आ गए। तो इसे शिवास पंडित है। तो महाप्रभु जब नवद्वीप में रहे तब तो शिवास का उनका हेडक्वार्टर था, वहीं के सब कुछ करते थे। एक बार तो शिवास के घर में अपने सासू आए, सासू जानते ना, अपने पत्नी के माँ, वो सुनते बोले अरे मैं सुनता हूँ प्रतिदिन रात में आपका घर में अच्छा ड्रामा होता है कितना, मैं भी थोड़ा एक बार देखूँ। आकर रिक्वेस्ट किए अपने बेटी को, किए होंगे बेटी खुद किए होंगे शिवास जी को, शिवास जी मना के बोले देखो इसे नहीं ना, मैं छुप करके बैठूंगी ना, मुझे आपने जो एक पेटी है जहाँ पर सामान फोन रखते उसका अंदर डाल देना और ढांक देना, मैं उसका अंदर रहूँगी, पता नहीं चलेगा, मैं को सुनती रहूँगी बस, कभी कभी थोड़े से देख लूँगा करने तो बस। तो ऐसे करके उसको वहाँ डाल कर रख दिए, मैंने बक्सा के अंदर पैक करके घर में रख दी, लोगों सुने रहे। तो भी महाप्रभु बोले कि नहीं कुछ गड़बड़ी है, कोई है अनधिकार व्यक्ति। और शिवास जी को पता नहीं था एक्चुअली, उनके पत्नी ने लाकर बैठा दी थी उसको छिपा करके। शिवास जी ढूंढे इधर उधर, देखे कि वो क्या करती थी उनके सासू, और इसे मुंह उठा करके थोड़ा देखती थी, उनके नजर पड़ गया शिवास जी का, ये बाल किसके देख पड़ते, फीमेल स्त्रियों के बाल इस दिखता है, ये क्या है? जाकर बक्सा कवर खोल करके बोले क्या उसका अंदर एक कवर ऐसे उठता है पड़ता है, पकड़े उसका चोटी को, उनके सांस चोटी पकड़ करके खींच कर घिसट करे ला करके बाहर फेंक दी उस भड़ो, किसी तूने आगे कर सकता कोई ऐसा? ऐसे है ना, तो ये केवल शिवासी ही कर सकते हैं। महाप्रभु के प्रति उनके कितने ममता है, कितने समर्पण है, कितने चाहते थे कि उनके महाप्रभु के सुख के प्रति ना तो उनके पत्नी, ना परिवार, ना पुत्र, ना धन, ना कुछ भी नहीं रहता था, इतने समर्पित थे। ऐसे आदर्श भक्त थे शिवास। तो ही आदर्श गृहस्थ भक्त संपूर्ण शुद्ध भक्तों के नेता हैं। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, वही जितने गौर भगवान के भक्त वृंद होंगे, सबसे बरियान, सबसे वरिष्ठ गरिष्ठ वही हैं श्रीवास पंडित। जब महाप्रभु ने नवद्वीप लीला छोड़ करके संन्यास लिए, नीलाचल चले गए, तो श्रीवास पंडित भी नवद्वीप छोड़ दिए, क्योंकि महाप्रभु के जन्म से पहले उन्होंने क्या आश्रम कीर्तन करके रहते थे, और भगवान प्रकट हुए हमेशा अपना घर छोड़ करके ज्यादा सब उनके घर में रहते थे गोष्ठी सहित। अब जब उन्होंने छोड़ के चल दिए नवद्वीप, तो शिवास कैसे सहन कर सकते हैं, वो भी नवद्वीप छोड़ दिए, लेकिन गृहस्थ थे वो तो जा नहीं सकते कहीं। आपने नवद्वीप छोड़ करके आके कुमारहट में बैठे आकर के कुमारहट में रहे। तो महाप्रभु जो दोबारा पुरी से वृंदावन की तरफ जाते थे, ढूंढते ढूंढते कुमारहट में उनके घर में आए, शिवास का घर में। तो इतने जैसे प्रभु और भक्तों का जो भाव है विनिमय, वो शिवास और चैतन्य महाप्रभु के साथ देख सकते हैं। इतने उच्च कोटि के उनका व्यवहार था, इतने उच्च कोटि के भक्त है। तो आज उनके आविर्भाव तिथि है, इससे जब भगवत पार्षद है उनका आविर्भाव तिरभाव तो होता नहीं, वो तो ऐसे आते हैं, किसी का महाप्रभु के जो पांच तत्व हैं, किसी का कोई समाधि अब देखने नहीं मिलेगा, शरीर थोड़ी छोड़े, वो शरीर के साथ ही चले गए, तो समाधि कैसे होगा किसी का नहीं। तो ऐसे लेकिन प्राकट्य तिथि आए थे, तो इसे शिवास पंडित जिनके चरण में अपराध करके गोपाल चापल तुरंत कुष्ठ व्याधि हुआ था गाली दे करके, देवानंद पंडित को महाप्रभु ने इतने डांटे, बोले मेरा शिवास के प्रति तो इतना कर सकता, तो कितने शिवास जितने महाप्रभु को चाहते थे, महाप्रभु इतने ही शिवास को चाहते थे। तो इस प्रकार शिवास पंडित का जो शुभ आविर्भाव तिथि है, इसी तिथि का ये अपॉर्चुनिटी को हम खोना नहीं चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के हम आज शिवास के गुण कीर्तन लीला कीर्तन यथासंभव किए, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यथा संभव इधर से उधर से किए, केवल अपना शुद्धिकरण के लिए। तो इस प्रकार कम से कम आज शिवास जी के तिथि पर अगर उनके गुण कीर्तन, उनके स्मरण तो करना ही चाहिए, और आज इस विशेष दिन में अगर शिवास पंडित के जिस प्रकार की श्रद्धा, जिस प्रकार के भक्ति, जिस प्रकार के समर्पण श्रीमन महाप्रभु के प्रति था, जिस प्रकार के उनके कीर्तन होता था, जिस प्रकार के उनके भक्ति करते थे, इस प्रकार के परिवार में रहकर भी उनके कृपा से अगर इस प्रकार के भक्ति भावना का, भजन का एक करोड़वां हिस्सा अगर हमको आज दे दें कृपा करके, तो हमारा ये बद्ध जीवन भी सफल हो जाए। हरे कृष्ण। श्री शिवास पंडित की।
और सायकाल में 5 से 8 इसके बाद सही भक्तों के लिए प्रशासन की व्यवस्था है। दरगाह से थोड़ा दूर पड़ जाएगा।
हाँ नहीं है नज़दीक, बिल्कुल पास में है।